أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کا بہترین فائدہ دے، اجر بھی دے. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کچھ باتیں فرشتوں کے بارے میں کریں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرشتوں کے بارے میں ہم بات کیوں کر رہے ہیں، کوئی خاص موضوع نہیں ہے، اس سے ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے، کچھ ایسی باتیں ذہن میں آتی؟ کوئی نماز کی بات کریں، پردے کی کریں، روزوں کی کریں، کیونکہ عام طور پہ تو ہم انہی موضوعات پہ سنتے ہیں نا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایمان بالغیب پہ کیوں بات کریں. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ایمان بالغیب، یومنون بالغیب، بلیف ان انسین ورلڈ، اندیکھی دنیا پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور اس کے تقاضوں میں سے یا اس کی جو چیزیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ ہے ایمان بالملائکہ کا. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر فرشتوں پر ایمان سیریز کا ایک پارٹ ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر فرشتوں پر ایمان لانا اتنا اہم کیوں ہے، اور وٹ ایور. اور پلس زیادہ بات آج ہوگی کہ فرشتوں کی کیا خوبی ہیں اور ہم انسان اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں. ایمان بالملائکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے لیے جو آیت آج آپ کے لیے ہے وہ ہے سورت بقرہ 177. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، یعنی ان جھگڑوں میں مت پڑو کہ قبلہ کدھر ہے. تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو جائے تو گھبراؤ نہیں. اور جو لوگ ماشاءاللہ حفظ بھی کر چکے ہیں یا جن کو آیتوں کی ترتیب پتہ ہے، دوسرے پارے کے بالکل شروع میں قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تھی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، تو اس پہ بہت شور اٹھا تھا، یہ پہلے قبلہ یہ تھا وہ کیوں ہے. عموماً لوگوں کو ایسے اختلافی موضوع بڑے اچھے لگتے ہیں اور ہر ایک اپنی بات کرنا پسند کرتا ہے. تو اللہ نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ نیکی، بلکہ کہا نیکی صرف یہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی بالشتوں سے ناپنے والی نیکیاں اور ایک ایک انچ اسٹیپ لے کر ادھر قبلہ ہوا نہیں ہوا، اس میں نہ بحث کرو. یہ تو ہے، ریچولس تو ہیں، لیکن یہ دین کی اصل تو نہیں. کیونکہ قبلے کا اصل جو مقصد ہے وہ تو ایک تعین ہے نا. جیسے آپ سب کی چیئرز کا رخ آج اس طرف کیا گیا، کیوں؟ تاکہ آپ کو اسکرین دیکھ سکے، بات کرنے والا دیکھ سکے، آپس میں آئی کانٹیکٹ ہو. رائٹ، مجھے انہوں نے ادھر کیوں بٹھایا، تھوڑا سا آپ سے اونچی جگہ پہ کیوں بٹھایا، تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. تو یہ ضرورت ہے نا، مقصد تو نہیں تھا نا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی کچھ چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا ہے تاکہ ساری امت ایک وحدت پہ پروئی جائے. لیکن کچھ لوگ جو دین کی روح نہیں سمجھتے، جو دین کو ایک چھوٹے سے جکسن پزل کی طرح نکال کر بس پورا دین بنا لیتے ہیں، اور کسی کو جو چیز زیادہ اپیل کرتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی شاکلہ ہوتی ہے، طبیعتوں کا فرق ہے. ابو بکر کی طبیعت اور تھی، عمر فاروق کی طبیعت اور تھی، ان کی شاکلہ کچھ اور تھی، ان کی کوئی اور تھی، خالد بن ولید کی کچھ اور تھی، حضرت عمر کی کچھ اور تھی، فرق تھا نا. تو اب ان چیزوں میں پڑھ کر کیا تم پورے دین کو بحثوں کا ذریعہ بناؤ گے؟ تو کہا ایسا نہ کرو. ولکن البر، اصل بات ہے اصل نیکی. اور جو بر ہے نا، آپ نے اردو میں لفظ سنا ہے برو بہر، خشکی اور سمندر. آپ کبھی سمندری سفر پہ گئے ہوں؟ میں تو جا چکی ہوں اور میں سوچ کے بھی گھبرانے لگ جاتی ہوں. تو جب میں بوٹ ٹور، ہمارے ناروے میں عام ہے نا، لوگ اوور نائٹ جاتے، ایک دن دو دن، پوری رات بھی وہ شپ میں ہوتے ہیں، کروز بولتے ہیں اس کو، یا بحری جہاز کہہ لیں، جیسا بھی ہوتا ہے، تو پھر ایک دن کے بعد واپس آتے ہیں. تو نئے نئے ہم جب گئے تو ہمیں بھی انہوں نے شوق میں بٹھا دیا کہ جائیے آپ سیر کریں. بحری جہاز کا نام بھی بڑا سنا ہوا تھا، لیکن بلیف بھی وہ ایک رات جب رات کو جہاز یوں ہلتا تھا نا، تو دل بھی ہل رہا تھا، دل ڈول رہا تھا. یہی دعا تھی کہ اللہ اگر آج خیر سے واپس اتر گئے تو میں نے نہیں کبھی اوور نائٹ نہیں جانا، چھوٹی موٹی کشتی کی سیر کر لیں گے ہم. تو وہ جب پانی میں کشتی ڈولتی ہے और फिर आपका दिल डरता है, लेकिन जब आप अगले दिन किनारे पे लगते हैं, वो कदम मुझे इस वक्त भी अपने याद है कि जब हमने बैरी जहाज से निकलने के लिए पाँव जमीन पे रखा, एक सुकून आया। तो एक बात याद रखिएगा, नेकी के सुकून बख्शने वाली नेकी। मेरी नजर में किसी इंसान का नेक होना उसका पुरसुकून होना, उसके अंदर बाहर एक खामोशी, पीसफुल, मुतमईन, कूल एंड काम, हम्बल, जो दूसरों को भी लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो। वो बहस मुबासे और एक दूसरे के खिलाफ आवाजें उठाने, मीम्स बनाने, वीडियोस बनाकर दूसरे को जबरदस्ती जानों में फेंकने वाला नहीं होता। इस्लाम तो है ही पीस, इस्लाम सलीमा या सलीमो से है, पीस है। तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, तुम भी मत खुश रहो, अगले को भी खुश रहने दो। तो अल्लाह कहते हैं नेकी क्या है, तुम्हें सुकून देने वाली चीज। और वैसे भी बरो बाहर का लफ्ज सुनते ना, तो जंगल में छोटी बड़ी लकड़ियां होती हैं, बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं, और छोटी छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ झंकार भी होती है। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि नेकी छोटी और बड़ी चीजों के मिलाप का नाम है। पहली चीज तो इसमें आप ईमान बिन मलाइका पे तो हम बात करेंगे अभी इंशाल्लाह, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन पहली बात इससे समझ लीजिए कि दीन के हिस्से बखरे करना, टुकड़े टुकड़े कर लेना। अफतू मेनून अभी बादिल किताबी व तक फुरून अभी बादिल किताब, ये दुरुस्त तरीका नहीं। इस्लाम का मुतालबा क्या है, या अय्युहल लजीना आमनु फिस्सिल्मी काफा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बात 17वें पारे में भी कही कि बास लोग ऐसे होते हैं जो मैं या अब्दुल्लाह अला हरफिन, किनारों पर रह के अल्लाह की इबादत करते हैं, जरा सा अगर कोई पसंद का मामला ना हुआ तो खिसक जाएंगे, जैसे कोई यहाँ ना बैठे दरवाजे के पास चला जाए कि अच्छा दिल लगा तो बैठेंगे, नहीं तो चुपके से खिसक जाएंगे। तो अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। नेकी भरपूर है, जैसे जंगल में हर चीज होती है, इस्लाम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। इस्लाम ए टू जी हमारा बहुत फेमस कोर्स है, अगर आप में से कोई फायदा उठाना चाहे तो यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। अब यंग बच्चियों के बच्चों के लिए कॉलेज में किया एक, उसकी भी रिकॉर्डिंग डली हुई है। यंग बच्चों को तो बताओ पहले अकीदा क्या है, फिर उनको बताओ कि तुम्हारी इबादात क्या है, फिर मामलात, फिर अखलाकियात। दीन के जो चार हिस्से हैं अगर आप उनको सामने रखें तो आपको ये बात समझ आ जाती है। तो बहरहाल वो तो एक अलग बहस हुई। यकीन कीजिए इस वक्त हमारी, मैं बड़े डरते हुए कहूंगी, 80% आवाम को ये इस्लाम की क्या चीज फर्स्ट है और क्या उसके बाद सेकंड, क्या थर्ड, क्या फोर्थ, इसका नहीं पता। मिसाल दो, मैं एक लफ्ज बोलती हूँ मंगनी, फिर मैं एक और लफ्ज बोलती हूँ निकाह, फिर मैं एक और लफ्ज बोलती हूँ रुख्सती, फिर मैं एक लफ्ज बोलती हूँ वलीमा। अब ये चार चीजों की तरतीब आप सबको पता है कि नहीं? सबको पता है, मंगनी पहले होती, निकाह बाद में होता, फिर रुख्सती होती, फिर वलीमा होता। और कोई कह दे अच्छा जी मैं पहले वलीमा कर लूँ, फिर रुख्सती, फिर निकाह और मंगनी, चलो शादी के 2 साल बाद मंगनी करे, बस इतना ही बेवकूफाना सा ये तरस अमल है। कई बेचारे ऐसे हैं उनको पता, वो कहते नहीं, आपका उनका फलां का अकीदा नहीं मिलता। किसी की बात करते हैं ना लोग एक दूसरे मसलक फिरके की, मैं तो नहीं करती, मैं तो कुरान तक ही बस रहती, मुझे कुरान से आगे कोई चीज नहीं दिख रही होती। कि माशाल्लाह उलमा कराम मौजूद हैं, वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, पहले कुरान तो समझो। तो किसी की कोई बात हो रही तो कहेंगी ना 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 ना, उनका अकीदा नहीं हमसे मिलता। तो मैंने कहा खैरियत क्या बात नहीं मिलती, कहती वो नमाज में रफुल यदैन करते तो हम नहीं करते। तो मैंने कहा सिस्टर नमाज में रफुल यदैन करना, हाथों को बुलंद करना, ये अकीदा, मेरा तो ख्याल था कि ये इबादत से ताल्लुक रखती है जी। वो क्या होता है कि ये जो मसलक परस्ती, फिरका परस्ती, गिरोह परस्ती है ना, ये असल में क्या है, हम सब समझ गए क्या है, कुरान से दूरी है। आज कुरान हाथ में रख ले आपका कोई फिरका नहीं रहेगा, एक हाथ में कुरान एक में हदीस और सीरत से अमल की मिसालें ले लीजिए। तो कुछ लोग दीन के नाम पे मन पसंद छोटी छोटी चीजों को ले लेते हैं, बड़ी बड़ी नीक छोड़ देते हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इधर तरतीब दी है, वलाकिन अल बिर्र मन आमना बिल्ला, फर्स्ट थिंग, ये है फर्स्ट कम फर्स्ट। जो इस्लाम ए टू जी हमारा कोर्स है ना, मैंने 4 वीक्स में अमेरिका में कराया था पूरा। पहला वीक 4 क्लासें थी मंडे से थर्सडे, उसमें अकायद पे बात हुई, फिर दूसरे वीक में 4 डेज में इबादत, तीसरे में मामलात और आखिरी चौथे में अखलाकियात। तस्किया, ताकि लोगों को तरतीब तो पता चले, लोगों का अकीदा खराब है, आप उनकी नमाजों के पीछे पड़े हुए, पढ़ भी लेंगे तो फायदा होगा, लोग बेचारों का अकीदा भी नहीं सही, उनकी इबादत भी खराब है, आप उनकी नेल पॉलिश के पीछे पड़े हुए, समझ रहे हैं बात। तो हमेशा तबलीग में भी ये हिकमत रखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं मन आ मना बिल, दैट इज फर्स्ट ब्रिक, इस्लाम की पहली बुनियादी चीज मन आ मना बिल्ला, अल्लाह पे ईमान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको भी रग़बत दिलाऊंगी, ये जो सीरीज हमारी यूं मैनूना बिलगैब चल रही है, इसके शुरू के सब लेक्चर ईमान बिलगैब में अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में सुनिए। बड़ी डिटेल से हमने 3 लेक्चर हुए इस पे, बहुत बात की कि अल्लाह क्या है और अल्लाह क्या नहीं है। और बड़ी सिंपल, ये अभी जर्मनी में हुआ था ये कोर्स, शार्ट कोर्स लास्ट मंथ में, तो उसमें ये बात थी, लेकिन आपके मेरे लिए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर तो हमारा दिन शुरू होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ये मामलात करते हैं, और कुल हो अल्लाह हमारी फेवरेट सूरत है। और आज भी आप आने से पहले हमारी एक वीकली मंडे की मंडे क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह लुल्लू मरजान, आप भी चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, वो ओपन क्लास नहीं है, हमारे एडमिन्स के लिए है, सीनियर्स के लिए है, लेकिन फिर जो भी शौक से सुनता है उसको भी आने देते हैं। तो उसमें आज सूरत अखलास का एक लफ्ज़ हुआ है, क्या लफ्ज़ था? असमत। 10 चीजें असमत लफ्ज के बारे में बताई आज। पिछले वीक में अलाहद हुआ था, कुल हु अल्लाहु अहद, उससे पिछले में अल्लाह हुआ था, और उससे पिछले में कुल हुआ हुआ था। 4 क्लासों में हमने सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद और आज अल्लाहु समद का बस हल्का सा खुलासा किया। और ये कुल हु अल्लाह हम 120 मीटर पर आवर की स्पीड से पढ़ जाते हैं नमाजों में, ना पता अल्लाह कौन आ, अहद क्यों आया, वहद क्यों नहीं आया। तो ये मना मना बिल्ला हमारा कमजोर है, हमें अपने रब का ही नहीं पता। अमेज़ बाय अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र की एक सीरीज है, एक एक लेक्चर के अंदर यही है कि अल्लाह क्या है, कभी तुमने सोचा तुम्हारा रब के, हमारा आज अल्लाह के साथ ताल्लुक कमजोर है, अल्लाह हमारा मजबूत कर दे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम हम जो अपने आप को बोन मुस्लिम कहते, इंडो पाक से आए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो बैक होम हमारा गेटअप था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत बात होती है, अकीदे पे होती है। और आज हमारी नस्लों को भी जिस चीज़ पे आप इस्लाम पे जोड़े रखेंगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग तो आपके बच्चों को वो बरगला रहे हैं, वो तो वहम डाल रहे हैं कि अल्लाह है ही नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट रियली, डू यू बिलीव इन गॉड, वो कहते हैं हम नहीं मानते किसी अल्लाह को, नाउज़ुबिल्लाह। तो मना आमना बिल्ला आज का ये मौजू नहीं है, वल यौमिल आखिर दूसरा पार्ट, और यौम आखिर पे आखिरी दिन, ये एक हमारी इसी सीरीज का ईमान बिल आखिर है, उसके 8-10 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह, आखिरत क्या और क्या नहीं है, हमने इतना खेल समझा हुआ है, हो जाएगा देखेंगे जो होगा, इस ओके नहीं देखी जाएगी, चुप चुप चुप। अगर हमारे अमल नहीं बदल रहे ना, तो हमें कोई यकीन नहीं है कि फमैया अमल मिसकाल जर्रत इन खैर यराह का क्या मतलब है और शर्र यराह का क्या मतलब है। आज बात है वल मलाइका, यहाँ आप नोट कीजिएगा, पहली चीज अल्लाह पर ईमान, दूसरी यौम आखिर पे, पहली को ईमान बिल्ला कहते हैं, दूसरी को ईमान बिल आखिरा कहते हैं, तीसरी चीज वल मलाइका। अभी नबियों का जिक्र नहीं आया आयत में, किताब का जिक्र इसके बाद आ रहा है, बिलकदरी खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह का जिक्र अभी कोई नहीं है, लेकिन आयत में तीसरे नंबर पे वल मलाइका का तस्करा है, फरिश्तों पर ईमान। तो ये है वो चीज़ जो हमें इस वक्त इस चीज़ की रग़बत दिला रही है कि हम खुद देखें कि हमारा फरिश्तों पर कितना ईमान है, फरिश्ते क्या क्या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्तों पर ईमान के कुछ हमारे सेशन इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फरिश्तों की आदात और सिफात और अखलाक और किरदार पर, और उनका मकसद हयात क्या है, उनको क्यों पैदा किया। हम तो कहते हैं ना वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदुन, इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आप सोचें आज जरूर कि फरिश्तों को क्यों पैदा किया, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब मिलेगा। और अगर वक्त ने इजाजत दी और आपके चेहरों पर स्माइल रहा, तो फिर आज ही के लेक्चर में चंद मशहूर फरिश्ते, उनके नाम और उनके काम बताऊंगी। और आगे इसी सीरीज का एक लेक्चर सिर्फ जिब्राइल पे आ रहा है, जो हम दमाम से करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन के बाद हो रहा है वो, क्या पता चला कि ये वो मौजू है जिस पे हमें बहुत बात करने की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग, जो इस वक्त चंद आयतें आप नोट कीजिएगा, कुरान से बात नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि वही काफी है। आयत का नंबर, सूरत का नंबर नोट कर लें और टॉपिक नोट कर लें, दैट्स इट, इतना ही बहुत है, ताकि हमें इस मौजू का कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म हो सके। तो फरिश्तों की क्या आदत होती है, उनकी क्या सिफात होती हैं? तो पहली बात यह है कि फरिश्ते इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं, इज्जत वाले हैं। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अल-अंबिया की आयत 26 में फरमाते हैं, बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो सब फरिश्ते अल्लाह के बाइज्जत बंदे हैं। यानी देखिए कि आपका मेरा पहला फर्ज ये बनता है कि फरिश्तों की इज्जत करें, उनकी इज्जत करें, उनको मुअज्जज समझें। आपको पता है कि आज क्या है, ये जो फरिश्तों पर ईमान है ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, क्रिश्चियंस का भी है, ज्यूस का भी है, मुशरिकीने मक्का का भी था। इस सीरीज में बैक लेक्चर आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, जब भी दिल चाहे आपका सारा बताया कि किस मजहब में क्या था। लेकिन आज के दौर में अफसोस के साथ कहूंगी कि फरिश्तों की इज्जत नहीं की जा रही। पैम्पर्स पहने हुए बच्चे, बच्चों की शक्लों में फरिश्ते कार्टूनों में दिखाए जाते हैं, वीक, कमजोर। ये एक पूरा एक माफिया है जिसने अंबिया कराम रसूलों के खिलाफ लोगों के जहन बनाए। आज लोग उसके खिलाफ बात करते हैं, खासतौर पे हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो दिन पहले बात कोई कर रहा था कि कोई ब्रदर थे, तो वो मतलब किसी मुस्लिम कंट्री से नॉन मुस्लिम कंट्री में जा रहे थे, फ्लाइट में कोई एक उनके साथ बैठा, तो उसने उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना डिस्कशन किया कि तुम्हारे नबी ने ऐसे किया, छोटी उम्र की बच्ची से शादी की, इतनी शादियां की। वो शख्स कहता है कि मैं अपने दिल में अल्लाह के नबी से इतना दूर हो गया, मैंने 4 साल तक नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, मुझे चिढ़ हो गई, मैं दीन से दूर हो गया। तो नेगेटिव प्रोपेगंडा भी हो तो असर तो रखता है। तो अल्लाह पहली बात आपको मुझे क्या कह रहे हैं कि फरिश्तों की इज्जत कीजिए, मोतबर है। और जब आप एक एक फरिश्ते के बारे में सुनेंगे तो आप रोएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप बहुत थोड़ा जानते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि ये हमारा इतना हेड टॉपिक नहीं है। हालांकि फरिश्ते कौन है जो इस वक्त भी आपके मेरे साथ है, क्या कुछ अल्लाह ने उनको काम दिया। मैं दूसरी आयत नोट कीजिए, सूरत तबसा आयत नंबर 15 और 16, बीआईडी सफरोतिन किरामिम बरारा। आयतों से तो आपको नंबर भी पता चल जाएंगे। सूरत तबसा की ये आयत क्या बता रही है, कुरान मजीद ऐसे लिखने वाले फरिश्तों के हाथों में है जो बुजुर्ग और पाकबाज हैं। ये दूसरा रेफरेंस मिल गया। तीसरा रेफरेंस हदीस से ले लीजिए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ता है और वो इसका हाफिज भी है, इसकी मिसाल मुकर्रम और नेक लिखने वाले फरिश्तों जैसी है। तीन हवाले काफी हैं, दो कुरान के और एक हदीस के, और ये रेफरेंस सही बुखारी का 4937 नंबर है। तो पहली बात लिख लीजिए, फरिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। दूसरी पे चलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह आपको मुझे पहली बात पे अपने लिए अमल की बात क्या करें कि अल्लाह हमें भी बाइज्जत बनाए। हमें अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए ताकि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें। अपने आप को बुरा कहना और मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे तो अक्ल ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं, आज के बाद ना कहिए। आप अल्लाह का मास्टरपीस है। जो औरत खुद को बेवकूफ़ कहेगी, दूसरे भी उसको 4 और ही बढ़ा कर करेंगे। आप दिन रात अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करेंगी तो आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अपनी इज्जत कीजिए। सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है, फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं। पहले तो अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें भी गुनाहों से पाक कर दे। ऐसी एक पर्सनल शेयरिंग सुबह हो रही थी कि आज ही उम्रा करके हम लोग आपके पास आए हैं, तो सीधा उम्रा किया और फौरन बस हम जद्दा के लिए निकल आए, और आपके साथ ये सेशन आज दूसरा सेशन है। तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह गुनाह बख्शवाने कितने मुश्किल हैं। हदीस बार बार याद आ रही थी कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच गुनाह माफ हो जाते हैं ना, कफारतु लिमा बैनहुमा। तो मुझे याद था, इस दफा थोड़ा सा अनयूजल हुआ क्योंकि लास्ट ईयर हम इस तरफ नहीं आए, अमेरिका चले गए, तो उम्रा नहीं हुआ ना। तो 23 की जनवरी या फेब्रवरी, नहीं रमजान के बाद शायद आए थे या पहले थे, आई डोंट नो, यानी तकरीबन पौने 2 साल के बाद हम आए हैं। तो मैं आज जब उम्रे से फारिग हुई तो मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको पौने 2 साल के मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तो चले अच्छा है, अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल कर ले, क्योंकि गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते की रुकावट होते हैं। तो क्या पता चला कि गुनाहों से पाक, अल्लाह करे कि हमारा उम्रा कबूल हो तो पाक हो जाए। हम कपड़े को साफ करना कितना मुश्किल है, धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लीच लगाते हैं, कभी पकाते हैं, कुछ करते हैं, तो याद रखिए कि फरिश्ते कैसे गुनाहों से पाक हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को ना मानना, डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह, इसी का नाम गुनाह है। और फरिश्ते अल्लाह ताला के बात मानते हैं, ये नहीं कभी हुआ कि अल्लाह ने कोई बात कही तो वो पीछे डाल दे, अल्लाह देखी जाएगी। जो हुक्म फरिश्तों को मिलता है वो फौरन से पहले उसको बजा लाते हैं। फरिश्ते हैं मुसलमानों की तरह या इंसानों की तरह नहीं, वो देखी जाएगी, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अच्छा रमजान आएगा तो ये देखना ये कर लेंगे। जैसे किसी ने हज पे जाना था तो कोई ऐसी बात हुई तो लोगों ने कहा भी खैरियत, कहेंगे कोई बात नहीं, जो गुनाह करना कर लो, अभी हज करूंगी तो पाक हो जाएंगे। अच्छा भी माशाल्लाह, आपको कि फलां चीज बुरी गुनाह नहीं, तो क्या करें फिर, दुनिया रखनी पड़ती है, फिर खानदान फैमिली बिरादरी, लोग कहते हैं ना फरिश्ते ऐसी कोई कट हुज्जती नहीं करते। चलिए नोट कीजिए रेफरेंस, कुरान क्या कहता है इस बारे में। पहला रेफरेंस सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफलून मा युमरून। वो फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है उसे वो बजा लाते हैं। देखिए अल्लाह ने फरिश्तों की ये खूबी इतनी खुल के क्यों बताई कि इंसानों को भी इससे रग़बत हो, वो इसका शौक रखें कि फरिश्ते बात मानते तो हम भी माने। आप घर में देखिए, एक बच्चा आपकी बात मानता, दूसरा अड़ी करता, तो आप क्या कहते हैं, देखो भाई कितने मेरी बात मानता है, बेटा तुम भी माना करो, है ना। तो बच्चों को हम सिखाते हैं, अल्लाह हमें फरिश्तों की ये बातें क्यों बताते हैं, ताकि हम भी उनसे सबक सीखें। तो अपने लिए अमल की बात लीजिए कि जो बात सुने उस पर अमल करें। हमारी टीचर, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हयात है अभी, तो उन्होंने ये पहले दूसरे सबकों में कह दिया था। कुरान की तफसीर जब पहली दफा उनसे सीखी तो उन्होंने कहा कि एक बात अपने आप से बांध लो, कुरान खुला ना बड़ा कुछ सामने आएगा, हुक्म आएंगे, बातें आएंगी अल्लाह की, जो बात सुनो आज सबक में आई, फौरन वही नियत करो कि अल्लाह इसको मानोगे। मिसाल दिया करती थी सदके की आयत, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था ना, तो 5 रुपए अपनी जेब से निकाल के डाल दो अल्लाह के रास्ते में, आदत डालो कि ये बात सुनी है तो इस पे अमल करना है, और वाकई ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा जो काम फौरन हो जाए ना वो हो जाता है, जो काम फौरन ना करे वो डिली डली का शिकार होता है। तो आपने लिए आदत बनाइए, दिल सख्त हो जाते हैं। आप सब तो माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे, और सऊदी अरब में तो सारे आलम फाजे लगता है हमें होंगे, कुरान और अरबी और हदीस और माशाल्लाह तहफीज और कितना कुछ है, लेकिन आप हैरान होंगे कितने लोग हैं हमारे अपने मुसलमान जो बाय बर्थ खुद को मुसलमान समझते और कहते हैं उनको कुरान समझ कोई नहीं आता। 10 हदीसें पूछ लें अरबी टेक्स्ट की नहीं समझ आती, 5 पूछ लीजिए जिसमें मतन के साथ पढ़ दो पूरी, उसकी सनद भी नहीं आता। तो क्या पता चला, वजह क्या, क्योंकि सुन सुन के सख्त हो गए। सुनिए फौरन अमल करें, जैसे बारिश पड़ती है ना जमीन पे तो एकदम जमीन में से बीज फूटते हैं, फौरन फूटेंगे, चंद महीनों में दिनों में जैसा कोई पौधा है उठ जाएगा, अगर कुछ दिन हो तो ना उठे तो खुले तो नहीं उगते। पहली दफा का कुरान जब आपके दिल पे बारिश की तरह पड़े फौरन अमल करें। पहला कुरान पहली मोहब्बत है, बेसाख्तगी होती है, इंसान बहुत रिलैक्स होता है, हर चीज न्यू लगती है, और जब पहली दफा कुरान पढ़ते हैं ना तो हर वक्त बंदा हैरान होता है, वो वाह ये भी बात कुरान में, औरतों की बातें, इतने छोटे छोटे मसले कुरान में है। तो अमल कर लीजिए, नहीं करेंगे ना तो पता क्या होगा, अगली दफा सुनेंगे तो थोड़ा सा हाँ हाँ ये पहले भी सुना था, तीसरी दफा तो कान भी नहीं लगाएंगे लोग, कहते छोड़े ना पता ही है जी, सबको पता है। जैसे वो पॉपकॉर्न है ना, कभी आप माइक्रोवेव में बनाए ना तो पहली दफा ही उसको जितने मिनट 1 2 3 मिनट पे करना है ना तो पॉप्स हो जाते हैं, कॉर्न अगर कुछ ना हो ना तो आप बार बार भी करें जल जाएंगे, फूलते नहीं है। तो जब दिल में जज्बे आए, उमंग आए, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इल्म के साथ अमल करते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे 8 साल में सूरह बकरा पढ़ी थी, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने इल्म और अमल का सफर साथ किया, तो आप और मैं भी इसी की कोशिश करें। चलिए अगला रेफरेंस लीजिए सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 27, ला यस्बिकूनहू बिलकौली वहुम बिअम्रिही यअमलून। वो फरिश्ते किसी फरमान में अल्लाह की बात पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि इसके फरमान पर कारबंद रहते हैं, यानी जो अल्लाह कह दे सर आंखों पे, पीछे नहीं डालते, पसे पुश नहीं डालते, जो अल्लाह ने कहा है उसको मानते हैं। इसी तरह तीसरा रेफरेंस लीजिए सूरत वाकया आयत नंबर 77 से 79, इन्नहू लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहरून। बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है, जो एक महफूज किताब है, यानी लोहे महफूज में है दर्ज है, और जिसे सिर्फ पाक बाज लोग यानी फरिश्ते ही छूते हैं। ये बड़ी मारूफ आयत है हमारे कल्चर में, कुरान को छुए के ना छुए, तो यहाँ जो आयत है वो फरिश्तों से है। अब जब आप फरिश्तों के बारे में इतना कुछ पढ़ते सुनते हैं, तो दिल में एक सवाल आ सकता है कि अगर फरिश्तों से गुनाह सरजद नहीं होता, तो फिर हारूत और मारूत का तस्करा कुरान में है। ऐसे लोगों को जादू सिखा दिया जो बाद में एक दूसरे को नुकसान देते हैं, इसी तरह इबलीस से गुनाह क्यों हुआ, और इसी तरह से आप देखिए कि इबलीस ने ये क्यों किया। तो जवाब क्या है? पहली तो बात है कि हारूत मारूत के बारे में जिन रिवायात को पेश किया जाता है वो सनदन ठीक ही नहीं है, उसमें भी भाम है। और इबलीस फरिश्ता तो नहीं था, वो कौन था? वो जिन्नों में से था। ठीक है, तो क्या पता चला कि फरिश्तों से अल्लाह सुबहाना तआला ने ये सेंस खत्म की हुई है, उनके अंदर गुनाह का या डिसोबीडियंसी का जज्बा और इमोशन ही नहीं है। अगला पॉइंट लीजिए, फरिश्ते इंतहाई नेक हैं। नेक किसको कहते हैं? साले को। नेक साले जो अल्लाह ताला का सही फरमा बरदार हो, जितना ज्यादा कोई फरमा बरदार होगा ना, उतना ही वो नेक और साले होगा। कहते हैं चामनी कम प्यारा, गोरा रंग भी हो ना, लेकिन अगला बंदा अच्छा ना हो, बात ना माने, तो वो गोरा भी नहीं अच्छा लगता। और काले रंग के हबशी बिलाल के कदमों की चाप अल्लाह के नबी ने जन्नत में सुन ली, कहा क्या बात है, मेरे से आगे थे तुम, कहा बस वजू के 2 नफिल पढ़ता हूँ, शायद अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। तो फरिश्ते चूंकि हर वक्त अल्लाह की बात मानने में लगे रहते हैं, तो इनसे गुनाह का सरजद होना ये है ही नहीं। और इंशाल्लाह इस मौजू को हम आगे फरिश्तों की जिम्मेदारियों में देखेंगे।